आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है, देश के 104 प्रधानमंत्रियों में पहली महिला। लेकिन अपने पहले भाषण में उन्होंने इस ऐतिहासिक पल का कहीं उल्लेख नहीं किया।
I will be fearlessly working hard without being afraid of changes for the country and the people. Today I put together the cabinet for that very purpose. I am determined to deliver results for the country.
ताकाइची ने अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का पहले वादा किया था, लेकिन उनकी कैबिनेट में 19 में से केवल 2 मंत्री ही महिलाएं हैं। लेकिन जापान में कई लोगों का मानना है कि ताकाइची की नियुक्ति देश में लैंगिक मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
Looking around, I feel Japan's women's advancement into society is lagging behind. In that sense, I hope that by having a first female prime minister, it can push the advancement from that side.
I just hope she'll properly handle a variety of issues. Right now, prices are high, and in many ways, things are pretty tough. So I really hope she does her best.
मंगलवार के चुनावी विजय से पहले ताकाइची अपने रूढ़िवादी रुख के लिए जानी जाती थी, जिसमें प्रवासन का विरोध, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर और पारंपरिक मूल्यों को महत्व देना शामिल है। उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी या LPD लंबे समय से जापान की सत्ता में है, लेकिन हाल ही के समय में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार घोटालों के कारण उसे अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ताकाइची को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एब ने मार्गदर्शन दिया था, जिनकी 2022 में हत्या कर दी गई थी। ताकाइची एब के वर्ल्ड वॉर टू में जापान के अत्याचारों को लेकर संशोधनवादी विचारों से सहमत है। वे अक्सर उस मंदिर में जाती हैं जो युद्ध अपराधियों का सम्मान करता है। ये कदम चाइना और साउथ कोरिया द्वारा आलोचना का विषय रहा है। हालांकि साउथ कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ली जे वूंग ने कहा कि उनकी सरकार ताकाइची कैबिनेट के साथ घनिष्ठ संवाद बनाए रखना चाहती है। चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता गो जुआकुन ने भी इसी तरह का रुख अपनाया है। ताकाइची को अब जापान की आयरन लेडी कहा जा रहा है, वही उपनाम जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को उनके ऋण राजनीतिक और नेतृत्व शैली के कारण दिया गया था।
We hope that Japan will work with China in the same direction, abide by the principles of the 4 China-Japan political documents, honor its political commitments on major issues such as history.
नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका पर बात करते हुए इस विषय पर और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी फेमेड सॉल्यूशंस की को-फाउंडर शांता एस रॉय। ये रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी कार्यस्थल पर महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करती है। शांता जी, महिलाओं के नेतृत्व को समाज में स्वीकार करने की सोच में क्या कुछ बदलाव आया है?
जरूर आया है बदलाव, बट ये बदलाव जो है बहुत स्लो है। इसका वैसा नहीं है पेस जो हम चाहते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर बढ़ी है काफी ज्यादा ये महिलाओं को लेकर, और उनकी जो एक नेतृत्व की शैली है जिसमें वो इमोशन और जो अपने एम्पथी और ये सब के लिए काफी केयरिंग होते हैं कुछ हद तक, तो इसका जो वैल्यू है ना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और लोगों ने देखा है कि ये जो कंपैशन और एक इमोशनल इंटेलिजेंस है जो ड्राइव करता है अपने लीडरशिप लेवल पे, ये काफी अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रहा है और लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं कि आज की डेट में महिलाएं भी वो सारे कार्य कर सकते हैं जो आम तौर पर देखा गया है कि वो मेल डोमिनेटेड काइंड ऑफ रोल्स है, तो उसमें भी महिलाएं अब आगे आ रही हैं।
क्या आपको लगता है कि कोटा या आरक्षण महिलाओं के नेतृत्व में सहायता दे सकता है?
कोटा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इंटेंट को लाने के लिए, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें कि भाई बस हम चाहते हैं कि कहीं पे ये जेंडर बैलेंस हो या महिलाएं आगे आए, तो बहुत बार वो पीछे इसलिए रह जाती है क्योंकि कुछ जॉब्स या कुछ रोल्स में लगता है ये मेल ही सिर्फ कर सकता है, क्योंकि सोसाइटी बहुत सालों से वैसे ही ग्रूमिंग हुई है सोसाइटी में लोगों की, तो ये माइंडसेट लेड इश्यू है। तो इंटेंट को लाने के लिए कहीं ना कहीं एक कोटा अगर आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर अपॉर्चुनिटी है जिसमें महिलाएं आ सकती हैं, खुद को साबित कर सकती हैं और बिल्ड कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कोटा से बाहर भी होना चाहिए ये विमेन का रिप्रेजेंटेशन।
अच्छा शांता जी, अगर वर्क प्लेस की बात करें तो क्या कुछ वुमेन सपोर्ट नेटवर्क या मेंटरशिप जरूरी होती है वर्क प्लेस में भी?
अभी आप देखो कि क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत है वर्क प्लेस के अंदर जेंडर बैलेंस लाने में, विमेन को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, थोड़ा वर्क को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, जिसकी वजह से विमेन अपने खुद के चैलेंजेस के साथ आती हैं। स्पेशली आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जहाँ पे माइग्रेंट्स है मेजॉरिटी में, तो वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है विमेन के लिए, कहीं ना कहीं एक फैमिली की तरफ का कमिटमेंट जो होता है उसको भी निभाना पड़ता है। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर वर्क प्लेस में कुछ ऐसे पॉलिसीज या इस तरह की कुछ फ्लेक्सिबिलिटी महिलाओं को मिले जिसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सके और अपने काम को भी कर सके, तो ये दोनों तरफ के लिए विन विन होता है, वर्क प्लेस जो कंपनी है उसके लिए भी और ये जो विमेन है इन द वर्कफोर्स उनके लिए भी, तो वो दोनों तरफ संभाल सकते हैं खुद को, ये कैपेबिलिटी है। आपको मालूम है बीइंग अ विमेन वी ऑल नो कि हम लोगों को मल्टीटास्किंग करने की आदत है, ये जैसे एक तरह से हमारी इनहेरेंट हमारे अंदर एक हमारी स्किल होती है कि हम बच्चे भी देख लेते हैं, एजुकेशन भी देख लेते हैं, हम वर्क प्लेस भी देख लेते हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो वर्क प्लेस के अंदर अगर ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है महिलाओं के लिए कि हाँ ये कर सकते हैं, तो और पॉलिसीज कुछ उस तरीके से बनाते हैं जिसमें इनको सपोर्ट मिलता है, तो बहुत हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद SBS हिंदी से बात करने के लिए।
शुक्रिया आपका।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।